आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? मेरा नाम अमन है और इस ऑडियो में हम क्लास 7th साइंस का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है लाइट को पढ़ेंगे। तो चलिए आप सब अपनी साइंस की टेक्स्ट बुक निकालिए एंड ओपन कर लीजिए पेज नंबर 174। सो ऑन पेज नंबर 174 हेयर इज योर चैप्टर दैट इज लाइट। बच्चों, जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है कि हम इस चैप्टर के अंदर लाइट और लाइट के अलग अलग इफेक्ट एज वेल एज उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपने आई थिंक 6th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को। यू माइट हैव सीन अ बीम ऑफ सनलाइट व्हेन इट एंटर्स अ रूम थ्रू अ नैरो ओपनिंग और अ होल। यू मे हैव ऑल्सो सीन बीम्स ऑफ लाइट फ्रॉम द हेड लैम्प्स ऑफ स्कूटर्स, कार्स एंड इंजन्स ऑफ ट्रेन्स, एज यू कैन सी इन फिगर 15.1 ए पार्ट। Similarly, a beam of light can be seen from a torch. Some of you may have seen a beam of search light from a lighthouse or from an airport tower, which you can see in figure 15.1 B part. What do these experiences suggest? Jaisa ki is chapter ke इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया गया है लाइट के बारे में, कि एक बंद कमरे के अंदर जब एक सनलाइट की बीम एंटर करती है तो आपने देखा होगा किस तरीके से पूरा रूम जगमगाने लगता है, वहां पर रोशनी फैल जाती है। अगर आपके रूम के अंदर लाइट क्लोज्ड है, हमने लाइट ऑफ कर दी और उसके बाद एक छोटी सी ओपनिंग से अगर सनलाइट की रेस अंदर एंटर करेगी, उसकी बीम ऑफ लाइट एंटर करेगी, तो हमारे पूरे रूम के अंदर लाइट स्कैटर हो जाती है, पूरा कमरा जगमगाने लगता है रोशनी से। तो ये क्या है? दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ठीक इसी तरीके से हम घरों में टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक टॉर्च। ये टॉर्च के अंदर से भी एक लाइट की एक बीम निकलती है। ये जो लाइट की बीम निकलती है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज लाइट, जो कि हमने एक्सपीरियंस भी करी है अपने डेली लाइफ में। तो ये लाइट के कुछ एग्जांपल्स थे। नाउ द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर नंबर 15 दैट इज लाइट इज लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो चलिए हम सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भोजो रिकॉल्स an activity he performed in class 6th. In that activity, he looked at a lighted candle first through a straight pipe and then through a bent pipe, which you can see in figure 15.2. Why was Bhoju not able to see the candle flame through a bent pipe? This activity showed that light travels along straight lines. तो यहाँ पर एक activity given है, that is कि भोजो को 6th class में perform की गई एक activity याद आती है, जिसके अंदर उसने candle को दो अलग अलग pipes के through देखा और observe करा। भोजो बताता है कि जब मैंने straight pipe से candle को observe करा तो मेरी ऑब्जर्वेशन कुछ और थी, और जब मैंने बेंट पाइप के थ्रू लाइट को ऑब्जर्व करा तब मेरी ऑब्जर्वेशन अलग थी। बेसिकली इस एक्टिविटी से ये पता लगता है डैट जो लाइटेड कैंडल है उसकी जितनी भी एनर्जी, जितनी भी लाइट वो प्रोड्यूस करता है और आसपास वो लाइट फैलती है, डैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ और अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अगर हम स्ट्रेट पाइप के थ्रू उस कैंडल को देखेंगे त तब हम उस कैंडल की रोशनी को देख सकते हैं। लेकिन अगर हम बेंट पाइप के थ्रू उस कैंडल को देखने की कोशिश करेंगे, उस टाइम पर हम लाइट को नहीं देख पाएंगे। Why? Because लाइट सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट पाथ में ही ट्रेवल करती है। अब जैसे कि आप फिगर 15.2 में देख सकते हैं, लुकिंग एट अ कैंडल थ्रू अ स्ट्रेट एंड अ बेंट पाइप। यहां पर भोजो क्या कर रहा है, एक बार स्ट्रेट पाइप से देख रहा है और एक बार बेंट पाइप से देख रहा है। सो बेसिकली ये छोटी सी एक्टिविटी थी जिससे ये पता लगता है डैट लाइट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट पाथ। सो दिस इज द वेरी बेसिक नॉलेज एंड कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। हाउ कैन वी चेंज द पाथ ऑफ लाइट? डू यू नो व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ पॉलिश्ड और अ शाइनी सरफेस? अब जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करेगी, लेकिन क्या हम लाइट के पाथ को चेंज कर सकते हैं, उसे बदल सकते हैं? तो इसके बारे में अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। इसी के साथ एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है डैट क्या आपको पता है कि अगर लाइट किसी पॉलिश सरफेस पे या फिर शाइनी सरफेस के ऊपर गिरेगी तो उस टाइम पर उसकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी एंड उसका क्या रिजल्ट निकलेगा? तो चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वन वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज टू लेट इट फॉल ऑन अ शाइनी सरफेस। फॉर एग्जाम्पल, अ शाइनिंग स्टेनलेस स्टील प्लेट और अ शाइनिंग स्टील स्पून कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। द सरफेस ऑफ वॉटर कैन ऑल्सो एक्ट लाइक अ मिरर एंड चेंज द पाथ ऑफ लाइट। हैव यू एवर सीन द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज और बिल्डिंग्स इन वॉटर विच यू कैन सी इन फिगर 15.3? एनी पॉलिश्ड और अ शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर। तो सबसे पहले आप इस स्टेटमेंट को अंडरलाइन कर लीजिए कि कोई भी पॉलिश या फिर शाइनी सरफेस एक मिरर की तरह एक्ट करता है और एक मिरर की तरह काम करता है। अब जैसा कि इस टॉपिक के अंदर बता रखा है, डैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है जब लाइट किसी एक सरफेस के ऊपर फॉल करती है, उससे स्ट्राइक करती है, तो उसके बाद वही लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, यानी जिस डायरेक्शन में वो जा रही थी ऑलरेडी और वो सरफेस के ऊपर स्ट्राइक कर रही, उसी सरफेस से वो स्ट्राइक करने के बाद दूसरी डायरेक्शन में ट्रैवल करना स्टार्ट कर देती है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि इस टॉपिक में लिखा है कि जो वाटर का सरफेस है वो भी एक मिरर की तरह ही बिहेव करता है। आप फिगर नंबर 15.3 में भी देख सकते हैं जहां पर वाटर बॉडी के ठीक किनारे पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है उनकी एक सेम इमेज वाटर के अंदर फॉर्म हो रही है। देयरफोर यहां पर लाइट की रिफ्लेक्शन का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल मिलता है, दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बॉडी। उसी के साथ जितने भी शाइनिंग बॉडीज होती है, जैसे कि शाइनिंग स्टेनलेस स्टील प्लेट, शाइनिंग स्टील स्पून, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं जिनका सरफेस शाइनी नेचर का होता है या फिर उनका सरफेस पॉलिश्ड होता है, ये भी लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं और लाइट की रिफ्लेक्शन इनकी वजह से कॉज होती है, ड्यू टू विच एक इमेज फॉर्म हो जाती है। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यू हैव लर्नड इन क्लास 6 that a mirror changes the direction of light that falls on it. This change of direction by a mirror is called reflection of light. Can you recall the activity in which you got the light of a torch reflected from a mirror? Let us perform a similar activity. Basically, जब मिरर के ऊपर कोई भी लाइट फॉल करती है और ये लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है या फिर इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इसी फिनोमिनन को और प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी लाइट की जो डायरेक्शन थी उसका चेंज हो जाना। सो दिस वॉज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसे हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। नाउ एक्टिविटी 15.1, टेक अ टॉर्च, कवर इट्स ग्लास विद अ चार्ट पेपर विच हैज 3 नैरो स्लिट्स एज शोन इन फिगर 15.5। स्प्रेड अ शीट ऑफ चार्ट पेपर ऑन अ स्मूथ वुडन बोर्ड, फिक्स अ प्लेन मिरर स्ट्रिप वर्टिकली ऑन द चार्ट पेपर विच यू कैन सी इन फिगर 15.5। नाउ डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट ऑन द मिरर फ्रॉम द टॉर्च विथ स्लिट, प्लेस द टॉर्च इन सच अ वे डैट इट्स लाइट इज सीन अलोंग द चार्ट पेपर ऑन द बोर्ड। नाउ एडजस्ट इट्स पोजिशन सो डैट द लाइट फ्रॉम द टॉर्च स्ट्राइक्स द प्लेन मिरर एट एन एंगल विच यू कैन सी इन फिगर 15.5। डज द मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट डैट फॉल्स ऑन इट? नाउ मूव द टॉर्च स्लाइटली टू ईदर साइड, डू यू फाइंड एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट? जैसा कि इस एक्टिविटी में बताया गया है, आपने क्या करना है, आपने एक टॉर्च लेनी है और उस टॉर्च का जो ग्लास है उसे कवर कर देना है एक चार्ट पेपर की मदद से, विच हैज़ 3 नैरो स्लिट्स एज शोन इन फिगर, जैसे कि उस चार्ट पेपर के ऊपर 3 नैरो स्लिट्स होनी चाहिए जो कि आप फिगर 15.5 में देख सकते हैं। स्प्रेड अ शीट ऑफ चार्ट पेपर ऑन अ स्मूथ वुडन बोर्ड, उसके बाद एक स्मूथ वुडन बोर्ड के ऊपर भी आपने एक चार्ट पेपर की शीट को स्प्रेड कर देना है। देन फिक्स अ प्लेन मिरर स्ट्रिप वर्टिकली ऑन द चार्ट पेपर, चार्ट पेपर के ठीक ऊपर आपने एक प्लेन मिरर की स्ट्रिप को वर्टिकली फिक्स कर देना है एज यू कैन सी इन फिगर 15.5। उसके बाद आपने क्या करना है, नाउ डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट ऑन द मिरर, अपने टॉर्च को इस तरीके से ऑन करना है ताकि टॉर्च से निकलने वाली जो बीम ऑफ लाइट है वो डायरेक्टली मिरर के ऊपर फॉल करे। प्लेस द टॉर्च इन सच अ वे डैट इट्स लाइट इज सीन अलोंग द चार्ट पेपर ऑन द बोर्ड, आपने टॉर्च को इस तरीके से अरेंज करना है ताकि जो लाइट है वो बोर्ड के ऊपर रखे हुए चार्ट पेपर के अलोंग दिखे। नाउ एडजस्ट इट्स पोजिशन सो डैट द लाइट फ्रॉम द टॉर्च स्ट्राइक्स द प्लेन मिरर एट एन एंगल, अब आपने क्या करना है, टॉर्च को कुछ इस तरीके से इस वे में अरेंज करना है ताकि वो सेम एंगल बनाए जैसे कि आप एंगल फिगर के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो दिस वॉज योर अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी स्मॉल एक्टिविटी विच यू हैव टू परफॉर्म। इसमें ये क्वेश्चनिंग करी गई है डैट ये जो मिरर है क्या इसकी वजह से लाइट की डायरेक्शन चेंज हुई? नाउ मूव द टॉर्च स्लाइटली टू ईदर साइड, अब आप टॉर्च को किसी भी साइड की तरफ थोड़ा सा मूव करिए, क्या अब आपको किसी भी तरह की रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व हुई? लुक इन टू द मिरर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट, डू यू सी द स्लिट इन द मिरर? दिस इज द इमेज ऑफ द स्लिट। दिस एक्टिविटी शोज हाउ लाइट gets reflected from a plane mirror. Let us play around with the images formed in mirrors and know a little more about them. जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि मिरर के अंदर और चार्ट पेपर के अलोंग हमें जो इमेज दिखाई दे रही है ये 3 स्लिट्स की इमेज हमें शो हो रही है। ये 3 स्लिट्स टॉर्च के ग्लास के ऊपर प्रेजेंट है और इसी की इमेज हमें प्लेन मिरर के अंदर दिखाई दे रही है। इस एक्टिविटी से हमें यह पता लगता है कि जो प्लेन मिरर है उसके ऊपर फॉल करने वाली या फिर स्ट्राइक करने वाली जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, डैट लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन मिरर। तो यहां से हमें ये रिजल्ट निकलता है और कंक्लूजन। तो आप इस स्टेटमेंट को अंडरलाइन कर लीजिए। इसके बाद ऑन पेज नंबर 175, पेज 175 पे बॉटम ऑफ द पेज पर एक ब्लू बॉक्स है, चलिए इसे रीड करते हैं। पहेली रिमेंबर्स दैट द स्टोरी ऑफ द लायन एंड द रैबिट फ्रॉम द पंचतंत्र इन विच द रैबिट फूल्ड द लायन बाय शोइंग हिम हिज रिफ्लेक्शन इन वाटर विच यू कैन सी इन फिगर 15.4। जैसा कि इस बॉक्स में लिखा है कि इस चैप्टर को पढ़ते समय पहेली को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी याद आती है जो कि हमने पंचतंत्र के अंदर लॉयन और रैबिट के बारे में सुनी थी। इस स्टोरी में बेसिकली ये था कि रैबिट जो था वो लॉयन को पागल बनाने के चक्कर में लॉयन को क्या करता है, उसे ये धोखा देता है कि वेल के अंदर अगर आप पानी के अंदर देखेंगे तो वहाँ पर एक दूसरा लॉयन है। बट द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड दिस वॉज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेसिकली जब लॉयन वेल के अंदर देखता है तो उसे अपनी ही रिफ्लेक्शन दिखती है, लेकिन लॉयन क्या सोचता है कि ये तो मेरे जैसा ही है और ये मेरी एक्टिंग कर रहा है, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ही एक्टिंग ये कर रहा है, जिसकी वजह से लॉयन को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो अपनी ही रिफ्लेक्शन को कोई दूसरा एनिमल समझ के उसके ऊपर कूद जाता है उससे लड़ाई करने के लिए। जैसे ही वो कूदता है तो वो डायरेक्ट ये नहीं देखता कि मैं कहाँ जंप मार रहा हूँ, बेसिकली वो एक वेल के अंदर कूद जाता है और वहाँ पर डूब के मर जाता है, जिससे रैबिट अपने आप को बचा लेता है। तो ये एक्टिविटी हमने पंचतंत्र के अंदर पढ़ी थी। बेसिकली इसका कंसेप्ट ये है कि वाटर के अंदर जो हमें रिफ्लेक्शन दिखती है डैट इज़ नथिंग बट आर इमेज। जो लाइट हमारी बॉडी सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करके वाटर के ऊपर फॉल होती है वही इमेज हमारी वाटर बॉडी के ऊपर फॉर्म हो जाती है। सो दिस वॉज जस्ट अ कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ एक्टिविटी 15.2। प्लेस अ लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल इन द मिरर। इट अपीयर्स एज इफ अ सिमिलर कैंडल इज प्लेस्ड बिहाइंड द मिरर। द कैंडल विच अपीयर्स बिहाइंड द मिरर is the image of the candle formed by the mirror, which you can see in figure 15.6. The candle itself is the object. Now move the candle to different positions in front of the mirror. Observe the image in each case. Was the image upright in each case? Did the flame appear on top of the candle as in the object? Such an image is called erect. An image formed by a plane mirror is erect and of the same size as the object. तो आप इस स्टेटमेंट को अंडरलाइन कर लीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। यहाँ पर बताया गया है एक एक्टिविटी के अंदर अगर हम प्लेन मिरर के सामने एक कैंडल को प्लेस करेंगे तो लाइटेड कैंडल की इमेज हमें मिरर के अंदर दिखाई देगी और ऐसा लगेगा कि मिरर के पीछे एक और कैंडल पड़ी है। देयरफोर ऐसी इमेज को हम एक इरेक्ट इमेज बोलते हैं। नाउ प्लेस अ वर्टिकल स्क्रीन बिहाइंड द मिरर। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल ऑन दिस स्क्रीन। कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन? नाउ प्लेस द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ द मिरर। Can you get the image on the screen now? You will find that the image of the candle cannot be obtained on the screen in either case. What about the distance of the image from mirror? Let us perform another activity. जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हम एक vertical screen को mirror के पीछे रख देंगे उस time पर अगर हम इमेज को ऑब्टेन करेंगे कैंडल की ठीक स्क्रीन के ऊपर, तो क्या आप स्क्रीन के ऊपर कैंडल की इमेज ऑब्टेन कर सकते हैं? अब आप मिरर के ठीक फ्रंट में स्क्रीन को रख दीजिए, क्या अब आप इमेज गेट कर सकते हैं? आप ये देखेंगे डैट जो कैंडल की इमेज है वो स्क्रीन के ऊपर किसी भी केस में नहीं ऑब्टेन हो रही है। तो बेसिकली इसे हम नेक्स्ट एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं, डेट इज एक्टिविटी 15.3। टेक अ चेस बोर्ड, इफ अ चेस बोर्ड इज नॉट अवेलेबल ड्रॉ ऑन अ चार्ट पेपर 64x8x8 स्क्वेयर्स ऑफ इक्वल साइज। ड्रॉ अ थिक लाइन इन द मिडल ऑफ द पेपर। फिक्स अ प्लेन मिरर वर्टिकली ऑन दिस लाइन। प्लेस एनी स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज ए पेंसिल शॉर्पनर एट द बाउंड्री ऑफ द थर्ड स्क्वेयर काउंटिंग फ्रॉम द मिरर विच यू कैन सी इन फिगर 15.7। नोट द पोजिशन ऑफ द इमेज। नाउ शिफ्ट द ऑब्जेक्ट टू द बाउंड्री ऑफ द फोर्थ स्क्वेयर। अगेन नोट द पोजिशन ऑफ द इमेज। डिड यू फाइंड any relation between the distance of the image from the mirror and that of the object in front of it? जैसा कि इस एक्टिविटी में लिखा हुआ है, आपने एक चेस बोर्ड लेना है, और अगर आपके पास चेस बोर्ड अवेलेबल नहीं है तो आप एक चार्ट पेपर के पीस के ऊपर भी चेस बोर्ड को ड्रॉ कर सकते हैं। आप इसमें थिक लाइन्स को ड्रॉ करिए पेपर के ठीक मिडल पे, और एक प्लेन मिरर को वर्टिकली आप इस लाइन के ऊपर फिक्स कर दीजिए। प्लेस एनी स्मॉल ऑब्जेक्ट, और इसके बाद आप कोई भी छोटा सा ऑब्जेक्ट इस मिरर के सामने रख दीजिए, मे बी अ पेंसिल शॉर्पनर, जो कि आप थर्ड स्क्वेयर काउंटिंग के बाउंड्री पे रखेंगे। डैट इज आपका जो मिरर है, मिरर से स्टार्ट करते हुए आप काउंटिंग कीजिए 1, 2, 3। And on the boundary of the third box, place this object. उसके बाद आपको एक इमेज अपने मिरर के अंदर दिखाई देगी। फिर आपने अपने इमेज की पोजीशन को नोट डाउन करना है। Then, अब आप अपने ऑब्जेक्ट को दोबारा से शिफ्ट कर दीजिए टू the fourth square, boundary of the fourth square. Then again, note down the position of the image. क्या आप डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर एंड दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का मिरर से कितना डिस्टेंस है और मिरर से इमेज का कितना डिस्टेंस है, क्या आप इसके अंदर किसी भी तरह का कोई रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं? बेसिकली यू विल फाइंड दैट द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। नाउ verify this by placing the object anywhere on the chart paper. Basically, हमें यहाँ से ये inference मिलता है that जितने distance पर object mirror से placed होगा, उतने ही distance पर mirror के behind हमारी image obtain होगी. So this was the basic concept of this chapter. Now, the very next topic is right और लेफ्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। When you see your image in a plane mirror, is it exactly like you? Have you ever noticed that there is one interesting difference between you and your image in a mirror? Let us find out. बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये इस चैप्टर का एक मेजर कॉन्सेप्ट है। बेसिकली जब हम प्लेन मिरर के अंदर ऑब्टेन हो रखी हमारी इमेज को ऑब्जर्व करते हैं, तो वहाँ पर उस इमेज में और हमारे में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। लेकिन एक बहुत ही बड़ा मेजर डिफरेंस इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। चलिए इस डिफरेंस को हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। एक्टिविटी 15.4। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एंड look at your image. Raise your left hand. Which hand does your image raise? As you can see in figure 15.8. Now touch your right ear. Which ear does your hand touch in your image? Observe carefully. जैसा कि इस एक्टिविटी में बताया गया है, हमें क्या करना है, प्लेन मिरर के सामने खड़े होना है और अपनी इमेज को देखना है। उसके बाद इमेज को ऑब्जर्व करते हुए हमें हमारा लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ रेज करना है, जैसे कि आप फिगर 15.8 में देख सकते हैं। आपने अपना लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ रेज करना है और अपनी इमेज के अंदर ऑब्जर्व करना है। दिस वॉज फर्स्ट केस। नाउ इन सेकेंड केस आपने क्या करना है, आपने अपने एक हाथ से अपने ईयर को, डैट इज हाथों से अपने कान को टच करना है और सेम एज दैट दोबारा से इमेज के अंदर ऑब्जर्व करना है कि हमारी इमेज के अंदर कौन सा हाथ हमारे ईयर को टच कर रहा है। सो दिस वॉज अ वेरी सिंपल एक्टिविटी एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। बेसिकली जब आप इसे ऑब्जर्व करेंगे देन यू विल फाइंड दैट इन द मिरर द राइट अपीयर्स लेफ्ट एंड द लेफ्ट अपीयर्स राइट। बच्चों इस स्टेटमेंट को अंडरलाइन कर लीजिए कि मिरर के अंदर जब आप अपनी इमेज को ऑब्जर्व करेंगे तो आपकी राइट साइड लेफ्ट साइड की तरह अपीयर होगी और आपकी लेफ्ट साइड मिरर के अंदर राइट साइड की तरह अपीयर होगी। नोट दैट ओनली साइड्स आर इंटरचेंज्ड, द इमेज डज नॉट अपीयर अपसाइड डाउन। लेकिन मेन ऑब्जर्वेशन की बात यह है कि सिर्फ हमारी साइड्स चेंज होती है, दैट इज राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, लेकिन हमारी इमेज अपसाइड डाउन नहीं होती। अगर हमारा फेस ऊपर है तो इमेज के अंदर भी हमारा फेस ऊपर होगा, लेग्स नीचे हैं तो इमेज के अंदर भी हमारी लेग्स नीचे होगी। नाउ राइट डाउन योर नेम ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड होल्ड इट इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। हाउ डज इट अपीयर इन द मिरर? जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अब एक और छोटी सी एक्टिविटी, आपने क्या करना है, एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर अपना नाम लिखना है और नाम लिखने के बाद उस पीस ऑफ पेपर को पकड़ के आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए और ऑब्जर्व करिए दैट व्हाट विल यू सी इन द इमेज ऑब्टेन्ड ऑन द मिरर। वो आपकी जो इमेज है वो मिरर के ऊपर कैसी अपीयर होगी। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन एज इन फिगर 15.9? When the driver of a vehicle ahead of an ambulance looks in her or his rear view mirror, she or he can read ambulance written on it and give way to it. It is the duty of every one of us to allow an ambulance to pass without blocking its way. जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि अगर हम ambulance vehicles के ऊपर देखें तो वहाँ पर ambulance नाम का word लिखा होता है, वो वर्ड बेसिकली उल्टा लिखा होता है। अगर हम किसी मिरर के थ्रू उस वर्ड को पढ़ेंगे तो हमें वो करेक्ट दिखाई देगा, लेकिन अगर हम डायरेक्ट रीड करेंगे देन इट अपीयर्स टू बी रॉन्ग और लेफ्ट टू राइट। बेसिकली ऐसा इसीलिए होता है कि एम्बुलेंस के आगे चलने वाली जो व्हीकल होगी अगर वो मिरर के अंदर पीछे से आने वाली एम्बुलेंस को देखेगी तो उसे साफ साफ वर्डिंग के अंदर एम्बुलेंस दिखाई देगा, जिससे उसे एक सिग्नल मिल जाएगा डैट वी हैव टू गिव वे टू द एम्बुलेंस, वी शुड नॉट ब्रोक और वी शुड नॉट ब्रेक द पाथ फॉर द एम्बुलेंस। हमें हमेशा एम्बुलेंस के रास्ते को क्लियर रखना चाहिए, उसे कभी भी ब्लॉक नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट इज आवर फर्स्ट ड्यूटी। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट and the side mirror of a scooter or a car, the images of all the objects appear smaller than the object themselves. Have you ever wondered why is it so? इसी तरीके से अगर हम स्कूटर के या फिर जो हमारी बाइक्स होती है अगर हम इनके मिरर के अंदर ध्यान दें, ऑब्जर्व करें, तो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो हमें छोटे नज़र आते हैं as compared to their original size. ओरिजिनल साइज उनका बड़ा होता है लेकिन मिरर के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। क्या आपने कभी इसके पीछे का रीज़न फाइंड आउट करा है? तो ये हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, दैट इज प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर्स, जो कि हम हमारी नेक्स्ट ऑडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों इस ऑडियो के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट ऑडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आपका होमवर्क है, आपने इस चैप्टर की रीडिंग करनी है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। तो बाकी हम नेक्स्ट ऑडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।